الحمد لله وكفى وسلام على عباده المصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا إلى الآخر. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو ان آیات میں سے یہ آخری تین آیات رہ گئی تھیں جن کا ابھی ان کی تلاوت کر کے ہم نے کلاس کو شروع کیا ہے، تو اس سے پیچھے والی آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور ابھی ترجمہ ہی چل رہا ہے، خلاصہ تفسیر شروع نہیں ہوا تھا. تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر، ثم لنحن لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا. جہنم کا تذکرہ پیچھے چل رہا تھا کہ جو انسان کہتا ہے کہ کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، کیا اس کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ اس سے پہلے ہم اس کو تخلیق کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. بس رب کی قسم، تیرے رب کی قسم کہ ہم ضرور بالضرور جمع کریں گے ان لوگوں کو اور شیاطین کو، یعنی شیاطین کے ساتھ ان کو جمع کریں گے، اس کے بعد پھر ہم ضرور بالضرور ان کو حاضر کریں گے حول جہنم جسیا، جہنم کے آس پاس، جہنم کے ارد گرد. جسین کا مطلب گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے، یا گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے یا گرے ہوئے، بیسیکلی گھٹنوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، گھٹنوں کے ساتھ تذکرہ ہے اس کا. تو اس طرح سے جہنم کے گرد ضرور بے ضرور ہم جمع کریں گے، پھر اس کے بعد ہم جدا کر لیں گے ہر ایک فرقے میں سے ان لوگوں کو جو کہ رحمان کے ساتھ زیادہ اکڑ دکھایا کرتے تھے، رحمان کے ساتھ زیادہ اکڑ، عتیاً زیادہ اکڑ دکھایا کرتے تھے. اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم، پھر، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ لنحن اعلم، البتہ ہم زیادہ جانتے ہیں. نحن ہم، اعلم یعنی زیادہ جانتے ہیں یا جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، باللذین، ان لوگوں کے بارے میں، یعنی ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیا، جو کہ اس میں داخل ہونے کے زیادہ قابل ہیں. اولا کا مطلب کہ یعنی جو زیادہ ڈیزرونگ ہے، زیادہ مستحق ہیں داخل ہونے کے. سلیین کا مطلب داخل ہونا، ٹھیک ہے. تو ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ جہنم کے اندر داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں. اولا کا مطلب زیادہ قابل، زیادہ مستحق، اور سلیین کا مطلب کہ داخل ہونا. بہا، ہا ایک پروناؤن ہے جو کہ جنت کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے، تو جنت میں داخل ہونے کے. اچھا، وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، واو کا ترجمہ اور ان کا ترجمہ نہیں. یہاں پر ان جو ہے وہ نہیں، یعنی نافیہ، ان نافیہ کہتے ہیں اس کو، کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے. تو اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے نہیں سے. مِنْكُمْ، تم میں سے. کم ایک ضمیر ہوتی ہے، پروناؤن، جس کا ترجمہ تم سے کیا جاتا ہے، یعنی जब एक से ज्यादा लोगों से बात की जाती है ना, तो उसके लिए कुम का प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अंग्रेजी के अंदर यू ऑल, ठीक है, और मिन का मतलब होता है फ्रॉम, तो तुम लोगों में से नहीं है कोई भी इल्ला वारिदुहा, सिवाय इसके के वारिद, वारिद का मतलब कि कोई किसी का हाजिर होना, किसी का किसी चीज पर पेश होना, जैसे हम कहते हैं ना भाई तुम, वो फिर वारिद हो गया, यानी वो फिर आ गया, फिर वारिद हो गया, तो गोया के उर्दू में तो हम इसको जरा एक नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि कोई अनएक्सपेक्टेडली और अनइनवाइटेडली कोई आ जाए तो उसको कहते हैं वारिद हो गया ये, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि किसी का मौजूद होना, किसी का पेश होना। और हा ये प्रोनाउन जन्नत जहन्नम की तरफ पॉइंट कर रही है, वारिदुहा के जहन्नम के ऊपर वारिद, ठीक है, तो नहीं है तुम में से कोई भी सिवाय इसके कि वो जहन्नम के ऊपर वारिद होगा, यानी हर कोई जहन्नम पर वारिद होगा, तुमने से जहन्नम के ऊपर वारिद होगा, जहन्नम के ऊपर पेश किया जाएगा। काना अला रब्बिका हतमम मकदिया, काना का तर्जुमा है से करते हैं यहां पर, अला रब्बिका तेरे रब के ऊपर, तेरे रब पर, रब्बिका तेरा रब, हतमन हतमी बात उर्दू में भी कहते हैं ना, ये बात तो हतमी है, फाइनल बात है ये, ठीक है, तो हतमम का तर्जुमा ही लाजिम से करें यहां पर। और मकदियन, मकदियन का लफ्ज कजा से निकला, कजा, कजा का मतलब होता है फैसला, तो मकदी उस चीज को कहते हैं जिसका फैसला हो चुका हो, डिसाइडेड, ठीक है, फैसला शुदा, ठीक है, जो कि पहले से मुकर्रर है, फैसला शुदा है। क्या मतलब हुआ इस आयत का, कि ये बात तेरे रब की के ऊपर लाजिम है, मुकर्रर है, ऊपर से मुराद ये कि तेरे रब की तरफ से ये बात फाइनल है, लाजिम है, मुकर्रर शुदा है। क्या बात, इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि नहीं है तुम में से कोई भी सिवाय इसके के वो जहन्नम के ऊपर वारिद किया जाएगा, पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सुम्मा, फिर नुनज्जिल लजीना, हम निजात दे देंगे उन लोगों को, हम बचा लेंगे उन लोगों को, जैसे कहते हैं ना रेस्क्यू कर लेंगे, कोई समंदर में गिर गया, ठीक है, अब गिरने के बाद कोई तो डूब जाएगा और कोई ऐसा होगा जिसको के रेस्क्यू बोट आकर के वहां से बचा के निकाल लेगी, तो गोया के इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नुनज्जिल लजीना, हम निकाल लेंगे किन लोगों को, अल्लजीना, उन लोगों को जो इत्तकौ, जो के तकवा इख्तियार करते थे, यानी गुनाहों से बचते थे, अगर हो जाता था कोई गुनाह तो उससे तौबा कर लेते थे, इत्तकौ, उन लोगों को बचाएंगे। और दूसरों के साथ क्या होगा जो तकवा इख्तियार नहीं करते थे, नजरु वालिमीना फीहा जिसिया, नजरु छोड़ देंगे हम छोड़ देंगे, ठीक है, किन लोगों को, अज़्ज़ालिमीना, यानी गुनाह करने वालों को, जुल्म करने वालों को, यहां पर जुल्म से मुराद सिर्फ मारना पीटना नहीं कि किसी को मारते पीटते थे, जुल्म करते थे, या किसी की कोई चीज छीन लेते थे, यानी जमीन पे कब्जा कर लिया, घर पे कब्जा कर लिया, गाड़ी पे कब्जा कर लिया, मोबाइल फोन पे कब्जा कर लिया, राइट, नहीं, बल्कि जुल्म करते थे, गुनाह करते थे, तो हम छोड़ देंगे गुनाह करने वालों को, फीहा जहन्नम के अंदर, यानी उनको रेस्क्यू नहीं करेंगे, उनको वहां से नहीं निकालेंगे, जहन्नम के अंदर छोड़ देंगे, किस हालत में, जिसियन, जिसियन की हालत में छोड़ देंगे, जिसियन ऊपर भी लफ्ज आया के घुटनों के बल, औंधे मुंह गिरे हुए, ठीक है, तर्जुमे के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। खुलासा तफसीर हम शुरू कर रहे हैं इन्हीं आयात की, तो पहले हजरत इसमें शान नुज़ूल लिखते हैं कि ये आयात किस कॉन्टेक्स्ट में, किस वाक़े के तहत नाज़िल हुई, ठीक है, पहली आयत जो थी वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, कि अल्लाह ताला फरिश्तों की तरफ से जवाब दे रहे थे नबी अलैहिस्सलाम को कि हम नहीं नाजिल होते सिवाय अपने रब के हुक्म से। ठीक है, तो ये इसका शान यानी इस आयत का शान नुज़ूल बयान कर रहे हैं कि सही बुखारी में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ये आरजू जाहिर फरमाई कि जरा ज्यादा आया करो। ठीक है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के पास सबसे पहले जो वही लेकर के आए थे, आ तो पहले भी चुके थे, पहले किस वक्त कैसे आए थे, पहले क्यों आए थे नबी अलैहिस्सलाम के पास वही से पहले, वही तो 40 साल की उम्र में आई थी ना, तो उससे पहले भी कई दफा आ चुके थे। वो आना जो था वो वही के साथ नहीं था, बल्कि वो था शक्क सदर के लिए, सीने को चाक करके फिर दिल मुबारक को धो करके वापस लगाने के लिए, शक्क सदर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो पहले भी आ चुके थे, लेकिन उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी नहीं था कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं, और वही भी नहीं पहुंचाई थी। तो पहली दफा आए गारे हिरा के अंदर वही लेकर के, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक वाली पहली 5 आयात। तो इन आयात को सुनाने से पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को 3 मरतबा खूब जोर से भींचा था अपने दोनों हाथों में, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए थे, राइट, असली शक्ल में नहीं आए थे अपनी, बल्कि इंसान की शक्ल में जिसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, जैसे एक आम आदमी खड़ा होता है, इस तरीके से आके के फिर आपसे सलम को पकड़ा था और जोर से भेजा था। ठीक है, फिर उसके बाद छोड़ दिया था, फिर उसके बाद फरमाया था इकरा एक दफा, फिर आपसे फरमाया मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता। ठीक है, फिर उसके बाद पकड़ा और भेजा, फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर कहा इकरा, नबी सलम फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मुझे तो आता ही नहीं है पढ़ना। फिर तीसरी दफा किया, तो ये जो 3 दफा किया था ना, तो मशाइख ने, बल्कि हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा कि ये जो 3 मरतबा भेजा था, तो इससे जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान एक निस्बत बन रही थी। ठीक है, एक ताल्लुक बन रहा था, एक रिलेशनशिप बन रही थी। ठीक है, पहली दफा के भेजने के अंदर निस्बत इल्काई, मशायख के यहाँ बाकायदा ये टर्म्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ये टर्म्स कॉइन करी हैं। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को निस्बत इल्काई जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ पहली दफा भेजने में हासिल हो गई, ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग निस्बत होती है। दूसरी दफा भेजने में निस्बत इस्लाही हासिल हो गई जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है, ये इल्काई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निस्बत होती है, बहुत मजबूत ताल्लुक होता है। फिर जब तीसरी दफा भेजा, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान निस्बत इत्तेहादी हासिल हो गई नबी अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। निस्बत इत्तेहादी कैसी निस्बत होती है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक होता है, सबसे ज्यादा मजबूत, और ये इतना मजबूत होता है कि अब जो है ना वो सब कुछ एक हो जाता है, सिवाय जाहिरी शक्ल सूरत के सब कुछ एक हो जाता है। जाहिरी शक्ल सूरत भी किसी हद तक मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन दिल के ख्यालात, सोचें, फिक्रें, ये एक जैसी हो जाती हैं। ठीक है, ये निस्बत इत्तेहादी नबी अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हासिल हो गई। अभी निस्बत इत्तेहादी जब किसी को हासिल हो जाती है ना, तो इसकी वजह से मोहब्बत इतनी शदीद हो जाती है, इतनी शदीद हो जाती है कि अब जुदाई बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, ये रूहानी निस्बत होती है, ये वो जिस्मानी मोहब्बत, जिस्मानी शहवानी मोहब्बत की बात नहीं हो रही, ये रूहानी मोहब्बत की बात हो रही है। तो अब इसके बाद जो है ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम को 5 आयात सुना करके चले गए वापस, और फिर उसके बाद आने ही छोड़ दिया, अल्लाह की मर्जी थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते ही नहीं थे। तो नबी अलैहिस्सलाम को चूंकि निस्बत इत्तेहादी हासिल हो गई थी और इतनी शदीद मोहब्बत पैदा हो गई थी, तो नबी अलैहिस्सलाम वो यानी मिस कहते हैं ना, मिस करना किसी को, बहुत ज्यादा मिस करते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। ठीक है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो आके नहीं दे रहे, तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ऐसी कैफियत भी तारी हो जाती थी कि आप सलाम का दिल चाहता था कि अपने आप को हलाक कर लें, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पे जाकर के अपने आप को नीचे गिरा लें। ठीक है, लेकिन ऐसे मौके पर फिर अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम पीछे से आवाज देते थे कि नहीं आप ऐसा ना करें, आप अल्लाह के नबी हैं, मैं जिब्राइल हूं, तो जब ये सुनते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर रुक जाते थे, ठीक है। लेकिन ऐसी कैफियत पैदा हो गई थी, तो फिर जिब्राइल अलैहि सलाम से मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई। दोबारा 2.5 साल, फितरत वही का जमाना कहते हैं इसको, कि 2.5 साल तक जिब्राइल अलैहि सलाम फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ ना लाए, लेकिन 2.5 साल के बाद तशरीफ लेकर के आए और या अय्युहल मुद्दस्सिर वाली आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई अल्लाह की तरफ से। फिर उसके बाद आना शुरू हो गए, कुछ कुछ वक्फे के बाद आ जाया करते थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम सलाम को तो नस्बत इत्तेहादी हासिल थी और बहुत शदीद मोहब्बत, बहुत ज्यादा मुलाकात का शौक, तो फरमाते थे कि ए जिब्राइल जरा ज्यादा आया करो, है ना, मुझे तुम्हारे बगैर चैन नहीं आता, ठीक है। तो इस पर ये आयत नाजिल हुई और क्या कि हम आपकी दरख्वास्त का जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब देते हैं, सुनिए वो ये है कि हम यानी फरिश्ते बिदून आपके रब के हुक्म के वक्तन फवक्तन नहीं आ सकते, ठीक है ना, या हम अपनी मर्जी यानी हम अपनी मर्जी से नहीं आ सकते, बल्कि हम आपकी मर्जी से भी नहीं आ सकते, हम तो सिर्फ रब की मर्जी से आ सकते हैं, इसी की मिल्क हैं हम, अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं, हमारे आगे की सब चीजें लहू मा बैना अयदीना वमा खल्फना वमा बैना ज़ालिक, मकान हो या जमान, मकानी हो या जमानी, ठीक है, यानी हमारे आगे की सब चीजें, चाहे वो मकानी हो, मकानी का मतलब जो फिजिकल लोकेशन जिसको कहते हैं, और जमानी का मतलब वक्त से मुताल्लिक यानी आगे का जमाना, ठीक है, और इसी तरह हमारे पीछे की सब चीजें मकानी हो या जमानी, जो पीछे हमारे फिजिकल लोकेशंस हैं या जो पीछे हमारे जमाना गुजर चुका है, ठीक है, तो आगे वाला जमाना आगे वाली जगह, पीछे वाला जमाना पीछे वाली जगह, और जो चीजें इनके दरमियान में है, आगे का मकान तो जो मुंह के सामने होता है और पीछे का जो पुश की तरफ हो, और मा बैना ज़ालिका जिसमें ये शख्स खुद हो, सुभान अल्लाह, राइट, मा बैना ज़ालिका आगे और पीछे के दरमियान कौन होता है, बंदा खुद होता है, ठीक है, और आगे का जमान से मुराद मुस्तकबिल, पीछे का जमान से मुराद माजी, और मा बैना ज़ालिका जमाना हाल, है ना, इतना जबरदस्त एक्सप्लेन किया हमने, इतना हमने आपको समझाने की कोशिश करी थी तर्जुमे के दौरान, लेकिन जो हमारे अकाबिर का मुकाम है वहां तक तो हम उसकी हवा तक भी नहीं पहुंच सकते, कितना बेहतरीन अंदाज से समझाया कि माँ के आगे वाला जमाना मुस्तकबिल, पीछे वाला जमाना माजी, और माँ बहना जाले का जमाना है हाल, ठीक है। तो लहू ये सब कुछ अल्लाह के लिए है, ठीक है, ये सब कुछ अल्लाह के लिए है, अल्लाह का है, अल्लाह के लिए से मुराद अल्लाह का है, अल्लाह की मिल्कियत है, और आपका रब भूलने वाला नहीं है, वमा काना रब्बुका नसीया। इसकी तफसीर में लिखते हैं कि चुनाचे ये सब उमूर आपको पहले से मालूम है, अल्लाह ताला को सब कुछ पहले से मालूम है, मतलब ये है कि हम तकवीनन व तशरीअन मुसख्खर अमर है, यानी हम मुसख्खर हैं, मुसख्खर का मतलब होता है कि जो के किसी के कंप्लीट कंट्रोल में हो, अल्लाह ताला के हुक्म के कंप्लीट ताबे हैं, मुसख्खर अमर, ठीक है, तकवीनन भी तशरीअन भी, तकवीनन का मतलब कि अल्लाह ताला जो करवाना चाहते हैं जैसे करवाना चाहते हैं वो हो जाता है, ठीक, उसको कहते हैं तकवीनन, और तशरीअन का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, अब उसके ऊपर अमल करना या ना करना इसका इख्तियार मखलूक के पास है, अमल करें या ना करें अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है, ठीक है, ऐसे हुक्म को तशरीअन कहते हैं, ठीक है, और तकवीनन हुक्म के जिसके ऊपर अमल करने का इख्तियार नहीं होता या ना करने का इख्तियार नहीं होता, वो तो होगा ही, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हमें दो तरह के हुक्म दिए, इंसानों को भी दो तरह के हुक्म दिए, एक हुक्म अल्लाह का ये है कि नमाज पढ़ो, अब बंदे के इख्तियार में है कि भाई वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो अजाब मिलेगा, लेकिन अगर ये ना पढ़ना चाहे तो ना पढ़े, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि अगर ये नमाज नहीं पढ़ेगा तो इसको नींद नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। अगर ये नमाज नहीं पढ़ेगा तो ये सांस नहीं ले सकता, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये तशरीई हुक्म है अल्लाह ताला का, नमाज पढ़ो, इसको तशरीई हुक्म कहेंगे। एक अल्लाह ताला का हुक्म है तकवीनी, वो तकवीनी हुक्म जो है ना वो इस तरह नहीं होता कि हमारे कानों में आएगा फिर हमारी मर्जी है कि हम करें या ना करें, बल्कि तकवीनी हुक्म से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने एक मामला कर दिया हमारे साथ कि जब हमें भूख लगेगी ना तो अब हमें खाना खाना ही है, राइट। भूख मिटाने के लिए खाना खाना जरूरी है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप रह नहीं सकते, जिंदा रह नहीं सकते, आप चल फिर नहीं सकते, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप आपका इंतकाल भी हो सकता है खाना ना खाने की वजह से, ठीक है। तो खाना खाना ये एक ऐसा हुक्म कहलाएगा कि जिसके ऊपर अमल करना हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम चाहें तो खाएं चाहें तो ना खाएं, हमें खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तकवीनी हुक्म के अंदर आ जाएगा खाना खाना, ठीक है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे उमूर होते हैं जो कि इंसान के इख्तियार में नहीं होते, तो उनको तकवीनी हुक्म कहते हैं और तशरी उनको कहते हैं कि जो कि हमारे इख्तियार में होते हैं, हम करेंगे तो फायदा होगा, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन बहरहाल इख्तियार तो हमारा अल्लाह ताला ने रखा है उसके अंदर। तो फरिश्ते जो है ना वो हर हाल में अल्लाह ताला के हुक्म के गुलाम है, अपनी राय से एक मकान से दूसरे मकान में, यानी एक जगह से दूसरी जगह में, या जब हम चाहें कहीं आ जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से नहीं आ जा सकते, लेकिन जब हमारा भेजना मसलहत होता है तो हक ताला भेज देते हैं, यानी हमारे भेज देने की कोई जरूरत पड़ती है तो अल्लाह ताला हमें भेजते हैं। ये एहतमाल नहीं है कि शायद किसी मसलहत के वक्त भूल जाते हों, ठीक है। यानी जिस तरह हमें पता होता है कि जी कोई काम हमें करना है, उस काम के करने से फायदा है, लेकिन कभी कभी हम वो काम भी करना भूल जाते हैं, राइट, क्योंकि हम इंसान हैं, निसियान का मजमुआ है, हम भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला भूलते नहीं। जब किसी काम को करना है तो अल्लाह ताला जरूर बिल जरूर उस काम को करते हैं, भूलने का कोई तसव्वुर ही नहीं अल्लाह ताला के यहाँ। वो रब है आसमानों का और जमीन का, रब्बुस समावाती वल अर्दी वमा बैनहुमा, ठीक है, आसमानों और जमीन का रब है और उन सब चीजों का जो इन दोनों के दरमियान। So, जब ऐसा हाकिम व मालिक है तो ए मुखातब, जिससे के कुरान खिताब कर रहा है, ए मुखातब तू उसकी इबादत और अताअत किया कर, फअबुदहु वस्तदिर लिइबादतिह, और एक आध बार नहीं बल्कि उसकी इबादत पर कायम रह, वस्तबिर इबादतिह, ठीक है, कि उसकी इबादत पर तुम कायम रहो, और अगर उसकी इबादत ना करेगा तो क्या दूसरे की इबादत करेगा, तब क्या तुम अल्लाह की इबादत अगर नहीं करोगे तो फिर किसी की तो करनी पड़ेगी, ठीक है। भाई देखें, इंसान जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ये करेगा लाख इसको बचा तू, ये किसी पर तो मरेगा। दिल का काम है मोहब्बत करना, ठीक है ना, दिल का काम है मोहब्बत करना, क्योंकि दिल जज्बात का मुकाम है और जज्बात में सबसे जो अहम जज्बा है, सबसे स्ट्रॉन्ग जज्बा है, वो मोहब्बत का जज्बा है, ठीक है। तो अब दिल के तो फंक्शन है ना कि मोहब्बत करना है उसने, ठीक है, उसने किसी ना किसी से तो मोहब्बत करनी है, ठीक, तो बिकॉज उसका तो ये काम है, ठीक। उसी तरीके से इंसान की अकल, ठीक, पिछली किसी क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था ना कि हमारे रूह के अंदर मुख्तलिफ मकाम है, मुख्तलिफ यानी हिस्से समझ लें आप रूह के, एक हिस्सा बताया था आपको अकल, एक हिस्सा बताया था कल्ब, एक हिस्सा बताया था नफ्स, नफ्स का अपना एक फंक्शन है, कल्ब का अपना एक फंक्शन है, उसी तरह अकल का अपना एक फंक्शन है। तो कल्ब का फंक्शन तो हो गया मोहब्बत करना, जज्बात, ठीक है, जज्बात वगैरह, ये सारे कल्ब का फंक्शन होते हैं। उसी तरीके से अकल का फंक्शन क्या है, अकल का फंक्शन है कि किसी की अताअत करना, किसी की बात मानना, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि कि सिलेक्ट करना ये करूं मैं ये करूं, राइट, या यानी दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का को इख्तियार कर लेना, अकल का ये फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अकल जो है ना, ये जो फंक्शन करती है ना, इख्तियार करने वाला फंक्शन, कि मैं सीधे रास्ते को इख्तियार करूं कि मैं उल्टे रास्ते को इख्तियार करूं, अकल जो ये काम करती है ये किसी की अतात में करती है, बगैर अतात के वो इख्तियार नहीं करती, वो चॉइस नहीं करती, बल्कि ये इख्तियार जो है ये अतात के तहत होता है, वो किसी ना किसी की अतात करेगी। अकल आजाद नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से इख्तियार करे, बल्कि अकल मुतासर होती है, अंडर इन्फ्लुएंस होती है, किसी ना किसी के अंडर इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है ना। तो ये जो अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, किसी की अताअत करती है, किसी ना किसी की अताअत करती है, ठीक है। अब अच्छे की करे या बुरे की करे, करनी तो है इसने अता, यानी जिस तरह है ना कि दिल का काम है मोहब्बत करना, अच्छे से मोहब्बत करे या बुरे से मोहब्बत करे, उसने तो करना है मोहब्बत। उसी तरीके से अकल का भी ये मामला है कि उसने अतात करनी है, चाहे अच्छे की अतात करे चाहे बुरे की अतात करे, उसने तो करनी है अतात, ठीक है ना। अतात करके उसने इख्तियार करना है किसी चीज को, अच्छे की अतात करेगी तो अच्छा ऑप्शन इख्तियार करेगी, बुरे की अतात करेगी तो बुरा ऑप्शन इख्तियार करेगी, ठीक है। तो भाई अल्लाह की अतात करेगी तो अपने फायदे वाली चीजों की को इख्तियार करेगी, और अगर अल्लाह की अतात नहीं करेगी तो फिर किसी गैर अल्लाह की अतात करेगी, अल्लाह के अलावा किसी की अतात करेगी, ठीक है। और जब किसी अल्लाह के अलावा किसी की अतात करेगी तो फिर वो अपने नुकसान वाली चीज को इख्तियार करेगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ना रब्बुस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा अपनी बड़ाई अपनी शान बयान करने के बाद हुक्म कर रहे हैं फअबुदहु कि तुम अल्लाह की अतात करो, वस्तबिर अलैहा और मुस्तकिलन अल्लाह की अतात करो, यानी कि सुबह को अल्लाह की अतात कर ली और उसके बाद अल्लाह की अतात छोड़ दी, अब किसी और की अतात शुरू कर दी, फिर उसके बाद जी जोहर का वक्त आया तो अल्लाह की अतात कर ली और उसके बाद फिर किसी और की अतात शुरू कर दी, है ना। फिर असर का वक्त आया तो अल्लाह की अतात कर ली और फिर उसके बाद किसी और की अतात शुरू कर दी, नहीं, 24 आवर्स कंसिस्टेंटली अल्लाह ताला की अतात करो, हर काम में अल्लाह ताला की अतात करो। इसी वजह से ना ये दीनी और दुनियावी उमूर की तफरीक है ना, ये बड़ी मुश्किल है समझना, ये क्या होती है दीनी उमूर और दुनियावी उमूर अलग अलग, यानी है तो ये बहरहाल ठीक है कि एक लिहाज से आप कुछ कामों को दुनियावी काम कह सकते हैं, ठीक है ना, और कुछ कामों को आप दीनी काम कह सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि दीनी काम दुनियावी काम भी जो है ना ये भी अल्लाह की अतात में ही ईमान वाले ने करना है, ये नहीं है कि दुनियावी कामों के लिए वो कोई और तरीका इख्तियार कर सकता है, अल्लाह की अतात के अलावा कोई और तरीका इख्तियार कर सकता है, नहीं, मोमिन के लिए तो दीनी काम हो या दुनियावी काम हो हर काम में अल्लाह ताला की अतात है ना, ठीक है। सुबह को नमाज पढ़ने के बाद दफ्तर जाएगा तो अब दफ्तर क्या है, क्या दुनियावी काम है दफ्तर, तो दफ्तर में जाकर के उसने कोई यानी कोई किसी किसी भगवान की अतात करनी है दफ्तर में जाकर के, या दफ्तर में जाकर के उसने जो है वो अपने बादशाह की अतात करनी है, मुल्क के बादशाह की, या किसी और की अतात करनी है, नहीं, दफ्तर में जाकर के भी उसने अल्लाह की ही अतात करनी है, ठीक है। किसी और की अतात, किसी ने सवाल लिखा है कि किसी और की अतात से क्या मुराद है, मीन्स मखलूक, अल्लाह के अलावा तो फिर मखलूक हो जाती है, अल्लाह के अलावा तो फिर जो कुछ है वो मखलूक, क्योंकि खालिक तो सिर्फ एक ही, ठीक है, मखलूक की अतात। लेकिन मखलूक की अतात का मतलब क्या है, मखलूक की अतात का मतलब ये है कि मखलूक का वो हुक्म मानना जो कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, ठीक है, ये कहलाती है मखलूक की अतात। लेकिन अगर मखलूक आपको ये कह रही है कि अल्लाह की अतात करो, ठीक है, तो फिर वो मखलूक की अतात नहीं होगी, वो अल्लाह की अतात होगी। रसूलुल्लाह कौन है, खालिक है कि मखलूक, رسول اللہ خالق ہیں کہ مخلوق ہیں؟ بس اس کا جواب اگر آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. نہیں آپ نے جواب نہیں دینا نا, ہم ہی آپ کو جواب دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, جیسے آپ نے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر مخلوق کی اطاعت تو بری بات ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو نعوذ باللہ بری بات ہوئی, ہے نا؟ نہیں. ٹھیک ہے نا, تو جس وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں نا, اسی وجہ سے پھر جو رسول کے جو شاگرد ہوتے ہیں صحابہ کرام علماء کرام, ٹھیک ہے نا, ان کی بھی اطاعت اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کا ہی حکم بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مخلوق کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اللہ کی آواز آتی ہے اور اللہ کی اطاعت صرف آواز آئے گی تو کریں گے, بلکہ انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہو. بہرحال, تو عقل کا کام ہے اطاعت کرنا. ٹھیک ہے, کسی کی تو کرے گا. اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو, ہر وقت اللہ کی اطاعت کرو, اور ایک آدھ بار نہیں بلکہ اس کی عبادت پر قائم رہو. اور پھر اس کے بعد ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو کیا کسی دوسرے کی عبادت کرو گے؟ بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے؟ ہل تعلم لہ سمیا, کیا کسی کو جانتے ہو جو کہ اللہ کے جیسا ہو؟ ٹھیک ہے, یعنی کوئی اس کا ہم صفت نہیں, تو لائق عبادت بھی کوئی نہیں, بس اسی کی عبادت کرنا ضرور ہوا. اچھا, اور انسان منکر آخرت یوں کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ کیا یہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو اس کے قبل عدم سے وجود میں لا چکے ہیں؟ یعنی اس کے قبل جو پہلی اس کی تخلیق تھی نا, تو وہ کیا تھی؟ عدم سے تھی, نان ایگزسٹنس, وہاں سے اس کو ہم ایگزسٹنس میں لے کر کے آئے تھے, اور یہ اس وقت کچھ بھی نہ تھا. ولم یکو شیئا, یعنی یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا پہلے جسمانی فارم میں, تو کیا یہ روحانی فارم میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا پہلے؟ جب ایسی حالت سے حیات کی طرف لانا آسان ہے تو دوبارہ حیات دینا تو بدرجہ اولا آسان ہے, یعنی اور بھی زیادہ آسان ہے. سو قسم ہے آپ کے رب کی, ہم ان کو قیامت میں زندہ کر کے موقف حشر میں جمع کریں گے. موقف کا مطلب ہوتا ہے جگہ, مقام, کھڑے ہونے کی جگہ, جیسے پارکنگ لاٹ. پارکنگ لاٹ کیا ہوتی ہے؟ گاڑیوں کے کھڑی کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے, تو اس کو یہاں پہ سعودی عرب کے اندر موقف کہتے ہیں, پارکنگ لاٹ کو. اسی طریقے سے انسانوں کے کھڑے ہونے کی جگہ, وہ بھی موقف کہلائے گی. تو میدان حشر جہاں پہ انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا, تو وہ بھی موقف حشر, تو اس میں جمع کریں گے, اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی. بس شیاطین, واؤ کا مطلب یہاں پر ساتھ, معیت میں, جو دنیا میں ان کے ساتھ رہ کر بہکاتے سکھاتے تھے. ٹھیک ہے, ترجمے میں آپ کو بتایا تھا کہ شیطان اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ صرف اپنی ذات میں اکیلے میں گناہ نہ کرے بلکہ دوسروں کو گناہ کی طرف بلانا شروع کر دے, تو وہ شیطان کوالیفائی کر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی شیطان بننے کے لیے اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو. بیسکلی آپ کو سیلز ایجنٹ بننا پڑتا ہے. شیطان از ایکول ٹو سیلز ایجنٹ. ہر بندہ سیل نہیں کر سکتا, ہر بندہ سیلنگ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ دکان میں جاتی ہیں اور پھر پروڈکٹ خرید کر کے لاتی ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتی ہیں اپنے گھر میں. کیا آپ وہ پروڈکٹ جو گھر جو خرید کے لے کر کے آئیں ہیں, کیا کسی اگلے بندے کو بیچ بھی سکتی ہیں؟ اگلے بندے کو اس کے فضائل بیان کر کے بیچ بھی سکتی ہیں کہ وہ بندہ آپ کو باقاعدہ پیسے دے کر کے وہ پروڈکٹ خریدے؟ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے آپ کو پروڈکٹ کو بہت تفصیل سے سمجھنا پڑتا ہے, اس کی کوالٹیز کو سمجھنا پڑتا ہے, اور یہ بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر جو خرابیاں ہوں گی نا, اس خرابیوں کو کیسے جو ہے میں چھپاؤں اور اچھائیوں کو جو ہے میں اس کو یعنی خوب کھول کر کے بیان کروں, اور اگلے بندے کو کیسے میں کنونس کروں. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں سیلز مین بننے کے لیے. शैतान जो होते हैं ना, ये सेल्समैन होते हैं, ठीक है ना, ये खरीद गुनाह वाली प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले नहीं होते, बल्कि ये गुनाह को सेल करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जिन हो। जब गुनाह के सेल्समैन बन गया ना कोई बंदा, तो अब वो शैतान बन गया,
ठीक है।
तो इन सबको जो है वो इकट्ठा करेंगे। ये शयातीन बहकाते सिखाते थे, जैसा दूसरी आयत में है, काला करीनुहु रब्बना मा अतगैतुहु, ठीक है, कि शैतान एक और जगह अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, जिसको यहाँ पे नकल किया है, कि ये कहेगा जो इंसान के साथ जो करीन है, करीन कहते हैं करीब रहने वाला, बिल्कुल साझी, हमेशा साथ रहने वाला। तो आपको पता ही है हदीस मुबारक में आप सबने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान है जो कि उसके साथ रहता है हमेशा, तो वो उसका करीन कहलाता है, ठीक है। तो उसका करीन कहेगा, रब्बना, ऐ हमारे रब, मा अदगैतुहु, मैंने तो उसको गुमराह नहीं किया, ठीक है, वलाकिन काना फी ज़लालिन बईद, बल्कि ये खुद जो है ना वो गुमराही के रास्ते के ऊपर पड़ा हुआ था, वलाकिन काना फी ज़लालिन बईद, ये खुद गुमराही के रास्ते पड़ा हुआ था। क्या मतलब, मैंने तो सिर्फ उसको आइडिया दिया था, है ना, आइडिया पर अमल करना ये तो इसने खुद किया है, मैंने कोई इसको हाथ पकड़ के मजबूर भी थोड़ी किया था, ठीक है। तो ये तरीन कहेगा, तरीन, तरीन उस जिन को कहते हैं जो कि हर इंसान के साथ जुड़ा रहता है, हर इंसान के साथ लगा रहता है, ये तरीन जिन को कहते हैं, ठीक है, यानी जिन शैतान। बाकी एक होता है दोस्त शैतान, ये दोस्त शैतान क्या करता है, ये हाथ पकड़ करके गुनाह कराता है, सिनेमा हॉल लेकर के जाता है, म्यूजिक कॉन्सर्ट में लेकर के जाता है, किसी गंदी गलीज जगह के ऊपर लेके जाता है जहाँ पर के गुनाह हो रहा होता है, शराब खाने लेकर के जाता है, ठीक है, या किसी हराम बिजनेस के अंदर पकड़ करके, नहीं नहीं भैया इन्वेस्ट करो, बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा तुम्हें इस बिजनेस के अंदर, तो हाथ पकड़ करके खूब कन्विंस करके, और फिर है ना, तो वो फिर इंसान शैतान होता है। लेकिन जिन शैतान ऐसा नहीं करता, जिन शैतान सिर्फ आइडियाज डालता है। बहरहाल बहलाना, बहकाना और सिखलाना, ये शैतान का काम होता है। फिर इन सब को दोजख के गिर्द गिर्द इस हालत से हाजिर करेंगे कि मारे हैबत के घुटनों के बल गिरे हुए होंगे, ठीक है, जैसे एक तो इंसान खड़ा होता है अपने पैरों के ऊपर खड़ा होता है, लेकिन हम खुद भी फील करते हैं कि जब कभी बहुत ज्यादा इंसान के ऊपर खौफ तारी होता है ना, तो उसके पैर लरजना शुरू हो जाते हैं, है ना, फिर उसके लिए अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहन्नुम का खौफ कितना ज्यादा खौफ होगा, तो उस वक्त टांगे सिर्फ लरजेंगी नहीं, बल्कि इंसान गिर पड़ेगा, और गिर पड़ने के बाद ना फिर उसकी थाइस जो होती है ना, थाइस जो घुटने के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको थाई कहते हैं, ये हिस्सा इंसान का ज्यादा मजबूत होता है, तो थाइस के बल वो अपने आप को सपोर्ट कर लेगा, क्योंकि घुटने के ऊपर फिर थाइस होती है इंसान की, ठीक है, तो घुटने के बल वो गिरे होंगे। घुटने के नीचे वाला हिस्सा बड़ा कमजोर होता है, वो हिस्सा खड़ा नहीं रह सकेगा, ठीक है, तो घुटनों के बल गिरे होंगे। फिर उन कुफार के हर ग्रोह में से, जैसे यहूद व नसारा व मजूस और बुत परस्त, मजूसी कहते हैं आग की पूजा करने वाले, और बुत परस्त जो है बुत की पूजा करने वाले, तो इन लोगों को जुदा करेंगे, यानी इनको शिया, लनंजअन्न मिन कुल्ल शियातिन, शिया कहते हैं ग्रोह, तो उनको ग्रोह को दर ग्रोह जुदा कर देंगे, जो उनमें सबसे ज्यादा अल्लाह से सरकशी किया करते थे। अशद्दु अलर रहमाने इतिया, ज्यादा सरकशी करने वाले के सामने, ताकि ऐसों को औरों से पहले दोजख में दाखिल करें। फिर ये नहीं कि इस जुदा करने में हमको किसी तहकीकात की जरूरत पड़े, कि वहां पर जाकर के जैसे कि हर बंदे को की तलाशी ले रहे हैं, फिर उसके बाद पता लग रहा है कि अच्छा ये ज्यादा सरकश था वो कम सरकश था, तो वहां पे इस तहकीक के बाद अलग अलग करेंगे, नहीं, बल्कि हमें पहले से पता है, ठीक है, क्योंकि हम खुद ऐसे लोगों को खूब जानते हैं जो दोजख में जाने के ज्यादा यानी अव्वल मुस्तहब हैं, अवला बिहा सलिया, हमें पता है इस बात का कौन ज्यादा मुस्तहब है। बस अपने इल्म से ऐसों को अलग करके अव्वल उनको फिर दूसरे कुफार को दोजख में दाखिल करेंगे। और ये तरतीब सिर्फ अव्वलियत में है और आखरियत ना होने में तो सब मसावी हैं। ये जुमला मुझे भी एक्चुअली बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि ये जो तरतीब है कि अव्वल कौन जाएगा, ठीक है, तो अव्वल तो सबसे बड़े काफिर नहीं जाना है, फिर उसके बाद दूसरे नेक्स्ट बड़े काफिर ने जाना है, तो ये तरतीब अव्वलियत में है कि पहले कौन एंटर होगा। और आखिरियत ना होने में तो सब मसावी हैं या आखिरियत होने में तो सब मसावी हैं, ये बस थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल मफहूम इसका यही है कि बिल आखिर जाना तो सबने है, ठीक है ना, बिल आखिर ये नहीं होगा कि फिर कुछ रह जाएंगे, बल्कि सब ने जाना है अंदर, ठीक है, तो आखिरियत ना होने में तो सब मसावी है का मफहूम भी समझ में आता है। और जहन्नुम का वजूद ऐसा यकीनी है कि उसका मुआयना सब मोमिन व काफिर को कराया जाएगा। जहन्नुम का मुआयना यानी जहन्नुम दिखलाई सबको जाएगी, मोमिन को भी और काफिर को भी। गो सूरत और गर्ज मुआयने की मुख्तलिफ होगी। कुफार को बतौर दुखूल के यानी कुफार को दाखिल करने के लिए मुआयना कराया जाएगा, ठीक है, यानी सिर्फ यानी कि जी ऊपर से दिखा करके आप वापस ले आए, बल्कि दाखिल करने के लिए और ताजीब अबदी के वास्ते, यानी एक तो बतौर दुखूल क्योंकि उनको दाखिल कर दिया जाएगा, और गर्ज क्या थी उनके मुआयने की, गर्ज उनके मुआयने की ये नहीं थी कि बस वो डर जाए या वो बस संभल जाए, बल्कि उनको अजाब देना ये गर्ज थी। तो ताजीब अबदी के वास्ते हमेशा हमेशा के अजाब के लिए उनको जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। और मोमिनीन को बतौर अबूर पुले सरात और ज्यादत शुक्र व फरह के वास्ते मोमिनीन को क्यों मुआयना कराया जाएगा जहन्नुम का, या किस तरह से कराया जाएगा, बतौर अबूर पुले सरात, क्योंकि मोमिनीन का मामला ये होगा कि एक पुल होगा पुले सरात जो कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज, ठीक है ना, इस मटेरियल का बना हुआ होगा वो, और वो पुल जो है वो जहन्नुम के ऊपर से गुजर रहा होगा। उस पुल का दूसरा सिरा, पहला सिरा क्या होगा उस पुल का, मैदान हशर, ठीक है, यानी जहां से आप पुल पे चढ़ेंगे ना वो हशर होगी, और उसका दूसरा सिरा कहां पे जा रहा होगा, जन्नत के अंदर, ठीक है, लेकिन वो पुल गुजर किस चीज के ऊपर से रही होगी, जहन्नुम के ऊपर से, ठीक है, तो इस तरह से जो वो पुले सरात के ऊपर जो गुजर रहे होंगे ना, तो गोया कि वो जहन्नुम के अंदर ही होंगे, क्योंकि जहन्नुम की आग जो है उसकी इतनी गर्मी होती है कि वो तो बहुत दूर तक उसकी गर्मी जाती है, उसके शोले, उसकी आवाज, उसकी आग की गर्मी कितने मुसाफत तक जाती है, ठीक है, तो क्या ये जो पुले सरात है जो जहन्नुम के बिल्कुल ऊपर से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर से नहीं, थोड़ा ऊपर से बस गुजर रहा है, तो क्या वहां पे जहन्नुम की गर्मी, जहन्नुम की आवाजें, जहन्नुम की ये बदबू, ये सब वहां तक नहीं पहुंच रही होगी, पहुंच तो रही होगी, ज्यादा दूर नहीं होगा, ठीक है, तो इनको उसके ऊपर से अबूर करके, और मकसद क्या है जहन्नुम के ऊपर से, भाई किसी और रास्ते से नहीं ले जा सकते जन्नत में, भाई अल्लाह ताला के पास रास्तों की कमी है, जगह की कमी पड़ जाएगी, नहीं, अल्लाह ताला के पास ना जगह की कमी है ना रास्तों की कमी है, ठीक है, बल्कि मकसद है जहन्नुम के ऊपर से गुजारने का, वो क्या मकसद है, ज्यादत शुक्र और फरह, ठीक है, यानी जब जन्नत में जाएंगे ना तो फिर अल्लाह ताला का ज्यादा शुक्र अदा कर सके और ज्यादा उनको खुशी हो जन्नत में आ जाने की, ठीक है, अगर जहन्नुम देखे बगैर जन्नत में चले जाएंगे तो फिर जन्नत की वैसे कदर नहीं होगी जैसे कि होनी चाहिए। ये बात ना अल्लाह ताला के नजदीक बहुत अहमियत रखती है, अल्लाह ताला के नजदीक इस बात की बहुत ज्यादा अहमियत है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अल्लाह सुभानहु ताला, व्हाट, अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी, राइट, अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी जो है ना वो अल्लाह ताला के नजदीक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज है। ठीक है, देखिए अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों की कदर के लिए बड़ा इंतजाम किया है, बहुत इंतजाम किया है। ठीक है, क्या इंतजाम किया है, कोई मिसाल अगर आप में से दे सके कि अल्लाह ताला ने नेमतों की कदरदानी करवाने के लिए क्या इंतजाम आप किए हैं। ठीक है, ये एक इंतजाम तो अभी हमने पढ़ लिया ना, जन्नत की कदर करवाने के लिए जहन्नुम के ऊपर से गुजरवा रहे हैं, है ना, ताकि जन्नत की सही कदर आ जाए। आप इतने छोटे बच्चे तो है नहीं कि हम उसको पूरा इतना समझाएं कि ऐसे कैसे। तो अब इसको मजीद समझाने की बजाय हम आपसे खाली कुछ और इंस्टेंसेस पूछ रहे हैं, कुछ और ऐसे अपनी जिंदगी पे नजर डालें कि जिससे के बीमारी और से, माशाल्लाह बेहतरीन मिसाल। ठीक है, सेहत की कदर बीमारी से आती है, अगर बीमारी ना होती तो सेहत की वैसी कदर हम कर ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता कि सेहत क्या चीज होती है। हाँ भाई, ये तो फॉर जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में फॉर ग्रांटेड, यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हाँ भाई ये तो होना ही चाहिए था इस तरीके से, है ना, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं बीमार पड़ूं। नहीं, जब बीमारी आती है तब पता चलता है, या अगर आप खुद बीमार नहीं भी होते, अपने घर के किसी दूसरे फर्द को बीमार देखते हैं, उसके ऊपर बीमारी आई, है ना, तो फिर हाँ भाई वाकई है मैं बीमार नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कितनी अल्लाह ताला। उसी तरीके से हैंडीकैप, ठीक है, कि कितने लोगों को हम देखते हैं जो कि हैंडीकैप है, जिन किसी का पैर नहीं काम कर रहा, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, किसी की आंख काम नहीं कर रही, किसी का कुछ काम नहीं कर रहा, राइट। अल्लाह ताला ने हैंडीकैप लोग इस दुनिया के अंदर रखे क्यों, हत्ता के कितने होते हैं जो कि पैदाइशी हैंडीकैप होते हैं ना, राइट, रिटार्ड, मेंटली रिटार्डेड है कोई, कोई फिजिकली रिटार्डेड है कोई, किसी तरीके से ये क्यों रखे भाई, क्या जरूरत थी, क्या अल्लाह ताला सबको बेहतरीन तखलीक के ऊपर पैदा नहीं कर सकते थे, है ना। हालांकि कुरान में फरमाते हैं कि हमने इंसान को जो है वो बेहतरीन तखलीक के ऊपर पैदा किया, तो फिर ये इतने सारे टूटे फूटे लोग कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, राइट, नेमत की कदरदानी के लिए। अगर ये हैंडीकैप लोग ना होते तो इंसान को पता ही नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ, तो ये नेमत की कदरदानी के लिए, ठीक है। और उसी तरीके से अच्छा, अब इसके ऊपर एक जो औलाद का होना और ना होना, कितने लोग हैं कि जिनके पास औलाद नहीं होती, है ना, तो उन लोगों को देख करके औलाद की कदर कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी है, है ना, मुझे भी तो ऐसा बना सकते थे ना कि मेरे औलाद ना होती, ठीक है। अच्छा, इसमें जो उसूल की बात है ना, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, वो याद कर लें या लिख लें अपने पास। अरबी जुबान का एक मकूला है जो कि इस यूनिवर्सल प्रिंसिपल को बताता है, अल अशियाउ तारिफु बे अवदादिहा, के अशिया, अल अशियाउ चीजें, तारिफु पहचानी जाती हैं, बे अवदादिहा या बे अवदाद, अवदाद जो है वो अवदाद का मतलब है जिद, जिद की जमा है अवदाद, ठीक है। तो चीजें अपनी जिदों से पहचानी जाती है, यानी अपने ऑपोजिट से पहचानी जाती है, ठीक है ना, अगर ऑपोजिट ना होता ना तो फिर आप चीजों की हकीकत को समझ नहीं सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा अगर हर वक्त दिन होता तो हम अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते, अच्छा ये दिन क्या नेमत है, ये क्या हम कर सकते हैं। अगर रात ना होती, रात होती है तो पता चलता है कि अच्छा दिन कितनी बड़ी नेमत थी, उसके अंदर क्या क्या हम कर सकते थे जो कि हम रात में नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं, बीमारी और सेहत और औलाद का होना, औलाद का ना होना, ठीक है, आंखों का होना, आंखों का ना होना, हर चीज एक दूसरे की जिद है और इससे फिर हकीकत समझ में आती है। उसी तरीके से जन्नत और जहन्नम, ये दोनों जिदे हैं, ठीक है, तो जहन्नम को देख करके फिर जन्नत समझ में। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात जो कि आप सुन भी चुके होंगे, स्पेशली बच्चों की क्लास के अंदर इसके ऊपर एक से ज्यादा दफा बात हो चुकी है, कि देखिए अल्लाह ताला के ये चीज के लिए ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है दुनिया की जिंदगी में, तो इन मिसालों से अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ में आती है, ठीक है। किचन में क्लास लेने का ही नुकसान होगा। अच्छा चले, खैर किचन में भी क्लास आप ले सकते हैं अगर आपके पास वक्त की कमी है, और कोई ऐसी मजबूरी है कि आप नहीं कर सकती, बैठ करके क्लास लेने वाला वाला काम नहीं कर सकती, तो हमारी तरफ से इजाजत है आप ये किचन में भी क्लास ले सकती हैं। मकसद है कि सुनना, ठीक है। अच्छा, जब अल्लाह ताला सारे ईमान वालों को जन्नत में दाखिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जहन्नम देख करके आए हैं सारे के सारे पुलिस सिरात पर से चल के आए हैं, ठीक है। तो जन्नत में दाखिल हुए हैं तो वो कहते हैं ना, वो ठंडी सांस ली और गोया के भांपते कांपते किसी तरीके से अब पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, है ना, बचत हो गई, पहुंच गए सब इस तरीके से। अच्छा, अब वहां पे भी जाकर के ना, अब ये नहीं कि हाँ भाई आप जहन्नम को देख करके आ गए हो तो बस अब तुम्हें जन्नत की कदर हो गई, सब सब ठीक है बस, नहीं, बल्कि वहां पर जाकर के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होने वाले सारे ईमान वालों की दावत करेंगे, खाने की दावत, ठीक है, सबको एक खाने की दावत पर बुलाएंगे। अब जब खाने की दावत पर सब आएंगे तो वहां पर खाना क्या पेश करेंगे, रोटी, एक रोटी बहुत बड़ा, जैसे कि पिज्जा का एक बहुत बड़ा पिज्जा बनाते हैं, राइट, तो उस तरह की एक रोटी होगी वो पेश करेंगे खाने के लिए। वो रोटी किस चीज की बनी हुई होगी, वो रोटी जो है वो प्लैनेट अर्थ, जमीन जिसके ऊपर हम रहते हैं ना, उस जमीन का जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट, ठीक है, जो जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर है, जिस लेयर के ऊपर मिट्टी है, समंदर है, सब कुछ अर्थ क्रस्ट के ऊपर है। तो हम जो कुछ खाते हैं इस दुनिया के अंदर, ये सब का सब जो है वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर पैदा होता है, ठीक है, सारे फल, सारी सब्जियां, हत्ता के इनको खा करके जो जानवर, जानवरों का जिस्म बनता है, वो भी सब इन सारी चीजें होती है ना, अर्थ क्रस्ट के ऊपर होती हैं, ठीक है। तो जानवरों का जिस्म भी ये गोया के अर्थ क्रस्ट ही से बनता है। समंदर का जो पानी है, इस समंदर के पानी के अंदर मछलियां होती हैं, एक से एक मजेदार मछलियां होती हैं। तो ये सब का सब अर्थ क्रस्ट में। अल्लाह ताला जन्नत के अंदर जो जन्नतियों को पहला खाना देंगे खाने के लिए, वो खाना जन्नत की चीजों का बना हुआ खाना नहीं होगा, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका माल वो जन्नत से नहीं आएगा, बल्कि वो खाना बनेगा जो प्लैनेट अर्थ की अर्थ क्रस्ट है, उस क्रस्ट से अल्लाह ताला उस खाने को बनाएंगे। अब ये लोग जब इस खाने को खा लेंगे ना, तो उनको पता लग जाएगा कि दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें मौजूद थी, इन तमाम नेमतों को मिला करके जो खाना बन सकता था ना, उसका ये टेस्ट है, ठीक है ना, उस टेस्ट का इन लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया के अंदर सारी नेमतें ज्यादा से ज्यादा कितनी टेस्टी हो सकती थी, इस रोटी के जितनी टेस्टी हो सकती थी, ठीक है ना। अब उसके बाद जब ये जन्नत की, ओरिजिनली जन्नत की पहली गजा खाएंगे, तो अब इनको जन्नत की गजा की गजा की कदर महसूस होगी कि देखो दुनिया के अंदर बेहतरीन गजा का ये टेस्ट था, और जन्नत की पहली गजा का इसके मुकाबले में कितना ज्यादा टेस्ट है। तो फिर जन्नत की गजाओं की सही कदर इनको महसूस होगी, ठीक है ना। अब कहने का मकसद क्या है कि देखिए अल्लाह ताला के लिए नेमतों की कदरदानी कितनी अहम चीज है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करें, राइट। और अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कि बस अल्लाह को खुशी होती है और अल्लाह को गोया के कोई फायदा हासिल हो जाता है कि हम जब अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी करते हैं, नहीं, बल्कि नेमतों की कदरदानी के साथ अल्लाह ताला ने इनामात भी रखे कि तुम मेरी नेमतों की कदर करो, मैं तुम्हारे नेमतों को बढ़ाऊंगा और आसान कर दूंगा तुम्हारे लिए मामलात, मैंने तुम्हें दी है ना, इनकी कदर करो, इनके ऊपर मेरा शुक्र करो, मैं इन नेमतों को तुम्हारे ऊपर बढ़ाऊंगा। मूव कर दें अगर प्लीज, ठीक है। तो अल्लाह की नेमतों की कदरदानी, अल्लाह ताला की नेमतों के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र, अगर हम ये कर लें ना, तो हमारी जिंदगी दुनिया में रहते हुए भी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है। अच्छा इसको मुकम्मल करना है कि मोमिनीन को बतौर अबूर बोले सरात और ज्यादत शुक्र और फराह के वास्ते कि उसको देखकर जो जन्नत में पहुंचेंगे तो और ज्यादा शुक्र करेंगे और खुश होंगे, और बाज गुनाहगारों को सजाए महदूद के लिए जो कि दर हकीकत तबहीर है। ठीक है, तो गुनाहगार मोमिनों को जिनको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा तो वो किस लिए? तबहीर के लिए, यानी उनको जन्नत के लिए तैयार करने के लिए, क्योंकि जन्नत पाकीजा जगह है। गुनाहों के साथ इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, गुनाहों की नजासत के साथ। ठीक है, तो या तो बख्शवा ले अपने गुनाहों को तौबा के जरिए से, या शफात के जरिए से गुनाह बख्श दिए जाए, या ये कि जहन्नुम की जाग के अंदर जा करके जहन्नुम की आग के जरिए से फिर अपने गुनाहों की तखीर यानी मुतहर करवा लिया जाए। इसी उमूम मुआयने की खबर दी जाती है कि तुम में से कोई भी नहीं जिसका इस पर गुजर ना हो, किसी का दुखूलन और किसी का अबूरन, यानी किसी का दाखिल होकर के गुजर होगा, किसी का बस ऊपर से क्रॉस करती करती हुई शक्ल में गुजर होगा। ये वादे के मवाफिक आपके रब के एतबार से बतौर लाजिम मुअक्कद के है, कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया, जो जरूर पूरा होकर रहेगा। फिर इस जहन्नुम पर अबूर से यह ना समझा जाए कि इसमें मोमिन और काफिर बराबर हैं, बल्कि हम उन लोगों को निजात दे देंगे। सुम्मा नुनज्जिल लदीना, जो खुदा से डर कर ईमान लाए थे। इत्तकू अल्लदीना तकव, ख्वा अव्वल ही दफा में निजात हो जाए जैसे मोमिनीन कामिलीन को, यानी मोमिनीन कामिलीन जो कामिल मोमिन कौन होते हैं कि जो के गुनाहों से बचते हैं, वो मोमिन कामिल होते हैं। बहुत ज्यादा इबादतें करने वाले नहीं बल्कि गुनाहों से बचने वाले, ये होते हैं मोमिन कामिल। तो उनको अव्वली दफा में निजात हो जाएगी, यानी जहन्नुम की आग उनको छुएगी नहीं, और ख्वा बाद किसी कदर तकलीफ के जैसे कि मोमिनी नाकसीन को, और जालिमों को यानी काफिरों को इसमें हमेशा के लिए ऐसी हालत में रहने देंगे कि मारे रंजो गम के घुटनों के बल गिर पड़ेंगे, यानी खड़े नहीं रह सकेंगे वहां पर। मसाइल अकीका से पढ़ लेते हैं, अगर किसी को कोई सवाल है या कोई कमेंट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। औलाद की नाफरमानी के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि औलाद हमारी बात नहीं मानती और हमारी मर्जी से काम नहीं करती वगैरह, तो औलाद की तरफ से काफी लोग परेशान होते हैं। तो उसके ऊपर ना एक गुर की बात हम याद रखें, वो ये कि जब औलाद हमारी मानती है, ठीक है, जब औलाद हमारी बात पे अमल करती है, और ऐसे मौके बहुत होते हैं कि जब औलाद ने बात मान ली, स्पेशली जब वो छोटी थी तो बहुत सारे ऐसी बात थी जिसमें कि वो हमारी नाफरमानी नहीं करती थी, हमारी बात मानती थी औलाद। ठीक है, तो ये जो औलाद की बात मानना है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि औलाद आपकी बात मान रही है। भाई जरा इंसान तसव्वुर करे ना कि अताअत तो परवरदिगार की होनी चाहिए, राइट, अल्लाह ताला है ना जिसने के सारी नेमतें दी हैं अपने बंदों को। ठीक है, तो भाई अता तो अल्लाह की होनी चाहिए, हमने जो नेमत अगर औलाद तक पहुंचाई है तो वो भी तो अल्लाह की दी हुई नेमत है ना। ठीक है, तो हम तो कोई एहसान नहीं कर रहे, असल में इंसान अपने बारे में इस तरह से सोचे कि मैं तो अपनी औलाद पर कोई एहसान नहीं कर रही, एहसान तो सारा का सारा अल्लाह ने किया मेरी औलाद पर, राइट, कि मुझे वो चीजें दी जो कि मैं आगे औलाद तक पहुंचाती हूँ। ठीक है ना, तो अतात तो अल्लाह की होनी चाहिए थी, मेरी अतात की तो कोई सेंस ही नहीं बनती, मैं कौन सा खुदा हूं, मैं कौन सा इन नेमतों का सोर्स हूं जो कि मेरी औलाद तक पहुंच रही है। तो हकीकत तो क्या है कि मेरी तो अतात होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी अतात करवा ली, मेरी औलाद ने मेरी बात मान ली, मैंने उससे कहा कि बेटा ऐसे कर लो जा करके, उसने कर लिया ये काम। तो भाई ये अल्लाह ताला का मेरे ऊपर एहसान है कि उसने अपने एक बंदे से मेरी अतात करवाई, अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान है। औलाद अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की बंदी है, हमारा बंदा हमारी बंदी तो नहीं है ना, अल्लाह का बंदा अल्लाह की बंदी है ना। अल्लाह ने अपने बंदे से अपनी अतात के साथ हमारी भी अतात करवा ली, कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का हमारे ऊपर, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र नहीं बनता, राइट? अल्लाह ताला कि अल्लाह ये आपने क्या करवा लिया है कि आपने अपने बंदे से मेरी अतात करवा दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। हकीकत यह है कि जब हम अपनी औलाद की बात मानने पर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते ना, ये हम जुल्म कर रहे होते हैं, ये हम गुनाह कर रहे होते हैं, ठीक है, ये हम ज्यादती कर रहे होते हैं। हमें तो हर बात के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह आपके बंदे ने मेरी बात मान ली, अपनी औलाद को ना, अपने बेटे और अपने बेटे के साथ साथ अल्लाह का बंदा और अल्लाह की बंदी की तरह से भी देखना शुरू करना चाहिए। ये अल्लाह का बंदा मेरे तसर्रुफ में आया हुआ है, मेरे तसर्रुफ में आई हुई है, ठीक है। तो अल्लाह की नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करेंगे ना, जिसमें से एक बहुत बड़ी नेमत है कि औलाद ने आपकी बात मान ली, तो फिर अल्लाह ताला ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम के वादे को पूरा फरमाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब औलाद अगर नाफरमानी करे, औलाद बात नहीं मान रही, तो उस वक्त इस बात को याद रखें कि अल्लाह ने अपने बंदे से मेरी अतात की तौफीक छीन ली, उसके दिल में यह बात डाले कि जी इनकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, है ना, इनकी बात माने बगैर भी काम चल सकता है। तो अगर अल्लाह ताला ने ये काम किया तो फिर अल्लाह ताला जुल्म तो नहीं करते किसी के ऊपर, अल्लाह ताला किसी के ऊपर ज्यादती तो नहीं करते, अल्लाह ताला जो करते हैं उसके अंदर हिकमत और मसलहत होती है, कोई वजह होती है उसकी। तो अगर औलाद हमारी नाफरमानी करे ना, तो उसी वक्त अल्लाह ताला से माफी मांगना शुरू हो जाए, अल्लाह मेरा वो गुनाह जिसकी वजह से आपने अपने इस बंदे के दिल में ये बात डाली कि मेरी बात ना माने, ये अल्लाह मेरे उस गुनाह को माफ कर दीजिए, अल्लाह मैं भी आपकी बंदी हूँ, मुझसे खता हो गई, मुझसे गुनाह हो गया कि मैंने यकीनन आपको नाराज किया है कि आपने अपने इस बंदे, मासूम है, बच्चा है भाई, हमारे हाथों में पला है ना, हमारे घर के अंदर जवान हुआ है ना, कोई हम बाजार से खरीद के तो नहीं लाए ना इसको कि बाजार वालों ने गलत बना दिया था इसको, बाजार वालों ने कुछ गलती कर दी थी, कुछ क्या कर दिया था इसके साथ, राइट? हमारे अपने हाथों की पली हुई चीज है ना ये औलाद जो है, तो हमने कुछ गलती करी है ना, हमने कहीं अल्लाह ताला की नाफरमानी करी है, कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से औलाद जो है वो ऐसी हो गई है, ठीक है। तो उस वक्त जो है ना वो औलाद पे फ्रस्ट्रेट होना और उसके ऊपर चीखना चिल्लाना और ये करना, इसके बजाय जो है ना वो पहले, सबसे पहले अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, बल्कि दिल ही दिल में ना उस वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें, माफी मांगना इस्तिग़फ़ार कहलाता है, और आयत करीमा भी पढ़ना चाहिए। इसमें कोई तादादें नहीं होती हैं जो 200 मरतबा आयत करीमा पढ़े, नहीं, बल्कि अपने दिल ही दिल में ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनस ज़ालिमीन, अल्लाह आप कोई गलती नहीं कर रहे कि आपने अपने इस बंदे से मेरी जो नाफरमानी करवाई है ना, आपने अपने इस बंदे से मेरी जो नाफरमानी करवाई है ना, ये आप कोई गलत नहीं कर रहे, कोई आप जुल्म नहीं कर रहे, आप तो पाकीजा हैं, आप तो पाक हैं हर गलती से, हर जुल्म से, हर भूल चूक से, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, यकीनन मैंने ही कोई गुनाह किया है, मैं ही जालिम गुनाहगारों में से हूं, ठीक है, मैंने ही आपको नाराज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला के साथ राजो न्याज, राइट, हर वक्त जब अच्छा हो जाए, हमारी मर्जी के मुताबिक काम हो जाए, हमारी बात मान ले, अल्लाह ताला का शुक्र, और जहां हमारी बात ना माने फौरन माफी तलाफी, फौरन इस्तिग़फ़ार, फौरन आयत करीमा, ठीक है। ये गुर अगर हम सीख लें और फिर इसके ऊपर अमल भी करना शुरू हो जाए ना, बस हमारी सारी बिगड़ी बन जाएगी। और ये मामला सिर्फ औलाद के साथ नहीं होता, बल्कि ये मामला अल्लाह के सारी मखलूक के साथ होता है, यानी अल्लाह की हर मखलूक के साथ हमारा ऐसा ही तसव्वुर, ऐसा ही नजरिया और ऐसा ही गुमान रहना चाहिए जैसे कि अपनी औलाद के बारे में रहना चाहिए, ठीक है। इसके साथ अक्सर करते हैं।